आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
जनवरी में पापुआ न्यू गिनी में एक शांति स्थापना परियोजना की शुरुआत ही हुई थी कि अचानक उसकी फंडिंग रोक दी गई। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी सहायता बजट में की गई कटौती का एक और परिणाम था। 5 महीने बाद अब जाकर इन कटौतियों के प्रभाव को समझा जा रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे 100 से अधिक कार्यक्रम जो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे थे, इन कटौतियों से सीधे प्रभावित हुए हैं। साल की शुरुआत में कियरान ओटूल का कहना है कि कंसिलिएशन रिसोर्सेज ने एक 5 वर्षीय परियोजना की शुरुआत ही की थी।
We work primarily in communities, building or enhancing the capacities in communities to be able to prevent violent conflict. We had just started a program in the highlands of Papua New Guinea, and then it was quite quickly stopped as part of the USAID pulling out.
अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संगठन उस क्षेत्र में हिंसा रोकने की आशा कर रहा था जहां संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पिछले साल हाईलैंड क्षेत्र में जनजातीय संघर्ष के गंभीर रूप लेने पर 49 लोगों की मौत हुई थी, जिसे इस क्षेत्र में हिंसा की एक बड़ी बढ़ोतरी माना गया था।
It is what not happens, right? It is the headlines that don't exist. It is around sort of working on these complex long-term problems at a community level. So it's not just reacting to when violence occurs.
लेकिन पापुआ न्यू गिनी के हिला प्रांत में मध्यस्थों को तैनात करने की योजना, जो समुदाय को उनके मतभेद शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने में मदद करने के लिए बनाई गई थी, जनवरी में अचानक रुक गई जब अमेरिकी प्रशासन ने 90 दिनों के लिए यूएस एड फंडिंग को स्थगित कर दिया। तब से अब तक अमेरिकी सरकार द्वारा केवल 14% कार्यक्रमों की फंडिंग बहाल की गई है। कंसिलिएशन रिसोर्सेज को कुछ कर्मचारियों को हटाना पड़ा और अन्य के काम के घंटों में कटौती करनी पड़ी।
The communities that are affected by violence, and in particular the women that suffer abuse, the people that are affected directly by violence, who struggle to see a light at the end of the tunnel sometimes. I would feel more for them.
Australian Council for International Development की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कार्यक्रम उन 120 से अधिक कार्यक्रमों में से एक है जो ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियों द्वारा संचालित किए जा रहे थे और कटौती से प्रभावित हुए हैं। नीति और वकालत निदेशक जेसिका मैकेंजी कहती हैं कि इससे होने वाली लागत सैकड़ों मिलियन डॉलर में है।
$400 million worth of programming has been cut. 20 country offices have closed, and we've seen a number of staff laid off. Just one agency had to let go of 200 local staff, not even their own staff, and they would have been single income families, and so you can imagine the flow on effects of this.
काउंसिल को आशंका है कि इन कटौतियों का वास्तविक प्रभाव इससे कहीं अधिक होगा, क्योंकि उसके आधे से भी कम सदस्य इस सर्वे में जवाब दे पाए थे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संचालित ऑस्ट्रेलियाई कार्यक्रम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जिसमें प्रशांत क्षेत्र में 113 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर और दक्षिण पूर्व एशिया में 111 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की फंडिंग समाप्त की गई। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियों पर इसका असर अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया भर में भी पड़ा है। मैकेंजी का कहना है कि अकेले यमन में 7,65,000 लोगों की सहायता कर रहा एक कार्यक्रम बंद कर दिया गया।
It was providing life-saving medicine, it was providing life-saving food, and it was providing malnutrition help for 26,000 children under the age of 5.
वहीं नेपाल में 300 से अधिक लड़कियों को स्कूल जाने में सहायता करने वाला एक कार्यक्रम बंद करना पड़ा।
And that means that they're more exposed to modern slavery, to human trafficking, to forced child marriage. Like the flow-on effects of these projects and their ability to break the cycle of poverty are really quite compounding.
काउंसिल ने पाया कि बच्चों से जुड़े कार्यक्रम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बाल तस्करी के विरुद्ध प्रयास सबसे अधिक वित्तीय रूप से प्रभावित हुए। इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित परियोजनाएं रहीं। अमेरिकी प्रशासन ने प्रारंभिक स्थगन के दौरान एक समीक्षा की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वही कार्यक्रम सरकार द्वारा फंड किए जाएं जो राष्ट्रपति की विदेश नीति के अनुरूप हों। हालांकि सहायता संगठनों का कहना है कि उन्हें ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि किन कारणों से कार्यक्रम की फंडिंग रोकी गई, लेकिन ये माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन और लैंगिक समानता पर केंद्रित कार्यक्रम प्रशासन की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। ओटूल का कहना है कि इन कटौतियों में कुछ विशेष विषय वस्तु स्पष्ट रूप से नजर आते हैं।
I don't think there was much thinking gone into it, to be quite honest. I think it was anything that, you know, included elements of gender, which our program obviously did, but possibly even the words peace building was eliminated, we believe, pretty quickly. There's a lot of talk around peace from the administration, you know, a desire to sign peace agreements, to Nobel Prizes. but at the end of the day, peace starts in communities. It starts with people. It starts on the ground.
ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री एन अली का कहना है कि सरकार अब भी अमेरिकी कटौतियों के पूरे प्रभाव को समझने की प्रक्रिया में है।
We are concerned that the cuts will have an impact particularly on the poorer nations within our region, which is why we continue to say and to demonstrate that we are a trusted partner in the region. It's why we have not cut our aid budget. In fact, we've increased our aid budget.
ACFID यानी Australian Council for International Development मांग कर रहा है कि कुल फेडरल खर्च में से अंतर्राष्ट्रीय विकास बजट को 0.65% से बढ़ाकर 1% किया जाए ताकि अमेरिका द्वारा छोड़े गए खालीपन को भरा जा सके।
In the past, between 2005 and 2015, it was at 1% of Australian federal expenditure. So this isn't a really big change.
US aid funding के स्थगन के जवाब में लेबर पार्टी ने अपने चुनाव पूर्व बजट में वैश्विक स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रमों से $120 मिलियन की विदेशी सहायता को इंडो पैसिफिक क्षेत्र की ओर पुनः आवंटित किया है। कुल मिलाकर लेबर ने अगले वित्तीय वर्ष में विदेशी सहायता पर $135 मिलियन अतिरिक्त खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई, जो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के अनुरूप वृद्धि है। हालांकि ये लेबर पार्टी के उस प्लेटफॉर्म से कम है जिसमें प्रत्येक बजट में सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम GNI के प्रतिशत के रूप में सहायता राशि बढ़ाने और अंतिम लक्ष्य के रूप में 0.5% तक पहुंचाने की बात कही गई है। ये 2022 से 0.19% पर स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर एली का कहना है कि कुल खर्च को धीरे धीरे बढ़ाना जारी रहेगा।
That's what's in our platform. What I'm saying is what we have done is increase our overseas development assistance budget and that we have made a commitment to increase it by indexation.
सत्ता में आने के बाद से लेबर सरकार ने प्रशांत क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक और मानवीय पहलों में वृद्धि की है। चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताओं ने भी इस निवेश और सहायता कार्यक्रमों में बढ़ोतरी को प्रेरित किया। मैकेंजी का कहना है कि सरकार को उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनका प्रभाव सबसे अधिक हो।
We can rebalance it towards more of those health, education, nutrition programs rather than some of the more geostrategic imperatives.
Dr. Ellie कहती है कि ऑस्ट्रेलिया इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को प्राथमिकता देना जारी रखेगा।
We're focused on ensuring that the countries in our region have economic resilience. We're focused on the health needs of the countries in our region. We're focused on ensuring that our aid goes to where it's most needed and where it can have most impact. I don't think it should be a point of contention that Australia should be focused on the region in which we operate.
SBS News से रानिया यालब की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।